आगे चलते हैं आयत नंबर 141 से। वहुवल्लज़ी अंशा जन्नाते मारूशाते वगैरह मारूशात। यहाँ से अब आगे अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल हैं। और वही है जिसने बागान पैदा किए, वो भी जो छतरियों पर चढ़ाए जाते हैं और वो भी जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर के दरख्त और खेती जिनमें खाने की चीज़ें मुख्तलिफ तौर की होती हैं, और जैतून और अनार जो बाहम एक दूसरे के मुशाबिक भी होते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते भी नहीं होते, इनके फलों में खाओ जब वो निकल आए। और इसमें जो हक वाजिब है वो इसके काटने के दिन दिया करो और हद से मत गुजरो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। अगर आपका किसी का इंटेलेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है तो पिछले पारे में अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें दावत दी थी गौर व फिक्र की, कब किस चीज़ पे, जब फल पकने लगे। वहाँ पकने की बात थी तो अल्लाह ताला की मोहब्बत की बात थी कि अल्लाह ताला कैसे बंदों को इतना प्यारा रिस्क देते हैं। यहाँ आप देखिए कि थोड़ा सा उससे अगला कदम दिखा दिया, और वो क्या है कि इजा असमरा, जब फल आने लगे, जब शुरू में आता है, जब उसको काटने के वक्त करीब आता है, तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला रब भी है और इलाह भी है। वो सब चीज़ें हमें आपको देते भी हैं, और इसी के साथ साथ फिर अल्लाह ताला हमारे लिए उसमें से रिस्क लाकर आसानियों के मामले भी करते हैं। फिर आगे देखिए, वमिनल अनामी हमूलतम व फरशा। अब यहाँ कुछ जानवरों की बातें भी आ रही हैं। और मवेशियों में ऊंचे कद के और छोटे कद के पैदा किए, जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है खाओ, और शैतान के कदम ब कदम मत चलो, बिला शुबा वो तुम्हारा सरीख दुश्मन है। पैदा किए 8 नर और मादा, यानी भेड़ में से 2 किस्म और बकरी में से 2 किस्म। आप कहिए कि अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया है, या दोनों मादा को, या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों। तुम मुझको किसी दलील से तो बताओ अगर तुम सच्चे हो। ये नोट कीजिएगा जुमला, दलील का दीन है हमारा। और ऊंट में 2 किस्म और गाय में 2 किस्म। आप कहिए कि क्या अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया, या दोनों मादा को, या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों। क्या तुम हाजिर थे उस वक्त जब अल्लाह ताला ने तुमको इसका हुक्म दिया? आज भी पता नहीं फरिश्ते कहते होंगे कि ये जो ख़वातीन बैठ के रस्में कर रही हैं दीन के नाम पे, क्या उस वक्त वो कब था जब अल्लाह ने ये हुक्म दिया? यानी खुद साख्ता शरीयत पे तुम अमल करते हो, तो क्या तुम हाजिर थे? हम कुंतुम शुहदाइज वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा। तो इससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर बिला दलील झूठी तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे? यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। कुल्ला जिदु फी मा उहिया इलैया मुहर्रमा। ये बड़ी प्यारी आयत है, गौर कीजिएगा। आप कह दीजिए जो कुछ अहकाम बजरिए वही मेरे पास आए, इनमें तो कोई हराम मैं नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो इसको खाए। मगर ये के, अब यहाँ जरा दोबारा लिस्ट आउट कीजिएगा इस शरीयत इस्लाम में जो हराम चीजें हैं उसको जरा मोर एलेबोरेशन, मोर वजाहत के साथ बताया जा रहा है। सूरत मायदा में जरा कॉन्साइज था, थोड़ा सा मुख्तसरन बात थी, यहाँ उससे जरा से आगे बात है। और वो क्या क्या है? मगर ये कि वो मुर्दार हो, या ये कि बहता हुआ खून हो, या खिंजीर का गोश्त हो क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या जो शिर्क का जरिया हो कि गैर अल्लाह के लिए नामजद किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते कि ना तो तालिब लज्जत हो और ना हद से आगे बढ़ने वाला, तो वाकई आप करब गफूर रहीम है। और यही मामला पिछली कौम के साथ था। वल्लज़ीना और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए, और गाय और बकरी में से इन दोनों की चर्बियां इन पर हमने हराम कर दी थी, मगर वो जो इनकी पुश्त पर या अंतड़ियों में लगी हुई हो या हड्डी से मिली हो, इनकी शरारत के सबब हमने इनको ये सजा दी, और हम यकीनन सच्चे हैं। कौमों पर शरीयतें 2 वजूहात से बोझल बना दी जाती हैं, एक उनके फुकहा के फतवों की वजह से, ये भी हराम ये भी हराम, यानी जब दीनदार ज्यादा सख्ती बरतते हैं तो उस वक़्त ये हाल हो जाता है। और इसी तरह दूसरी वजह क्या होती है? नाफरमानियाँ। तो यहूद के साथ ये हुआ, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उम्मत मुस्लिमा आखिरी उम्मत है। आज उम्मत मुस्लिमा का जो बिगाड़ है, अगर ये आखिरी कौम ना होती तो अगली शरीयत इससे बहुत सख्त आ चुकी होती। तो आइए ज़रा सा तदब्बुर करते हैं इन आयात पे, औलाद के नेक बनने की दुआएं कीजिए और कोशिश भी। सदका देना है और अल्लाह की हम बयान करनी है, हराम अशिया की इकसाम को जानना भी है और फिर इन्हीं पे इक्तफा करना है, यानी हराम चीज कितनी टेम्पटिंग क्यों ना हो अपने आप को उससे दूर रखना है। मज़ारात पर नजरों न्याज और दुआ के लिए नहीं जाना, हमारे लिए अल्लाह काफी है। फजूल खर्ची अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह की पकड़ से डरना है, इसलिए महंगी चीजें खरीद कर एक आध दफा इस्तेमाल करके उनको अलमारियों की जीनत नहीं बनाना। हलाल और हराम के फतवे मुस्तनद दलील पर मबनी होने चाहिए, सिर्फ लोगों के ख्यालात और उनकी पसंद और नापसंद पर नहीं। गौर व फिक्र की चंद बातें। आलिम के लिए मुखालिफ के ख्यालात जानना जरूरी है ताकि वो इसके कौल और फिक्र की खराबी पहचान ले। इसराफ और फजूल खर्ची अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना, चाहे एक रियाल और करोड़ों खर्च कर दीजिए तो वो इसराफ नहीं, जबकि वो अल्लाह की रजा के काम में हो। जानवर को जिबा करते वक्त खून बहाने में हिकमत है क्या कि गंदा खून जिस्म से निकल जाता है जिसके अंदर बीमारियां होती हैं। गटर की मिसाल समझ लें, गटर की जो पाइप्स है ना उसमें सारे घर की गंदगी निकल रही होती है। हमारे सारे जिस्म में दिन रात सेल्स टूटते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। अब जो सेल टूटते हैं तो उनकी लाशें, उनकी गंदगी खून में आ जाती है। अल्लाह ने कितना प्यारा निज़ाम रखा हुआ है लंग्स और हार्ट का, कि खून इधर से जाता है, ब्लू वेन्स को आप देखते हैं गंदी वेन्स हैं और रेड वेन्स हैं। अब जब जिस्म में खून हो और उस जानवर को पूरा जिबा कर दिया जाए तो वो गंदगी वाला खून भी साथ ही होता है साफ खून की तरह, इसलिए यहाँ दमम मसूहा की बात हुई। गुना गुनाहगार के हक में बदबख्ती का सबब है, तो अपने आप को बदबख्त हम कब समझे, जब जानते बूझते आंखों देखे हमसे कोई गलत काम हो जाए। आगे देखते हैं 147 से। फ़इन कज़्ज़बू का फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिया, अल्लाह ताला की ज़रा रहमतों को महसूस कीजिए। फिर अगर ये आपको झूठा कहें तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है और इसका अज़ाब मुजरिम लोगों से ना टलेगा। ये मुशरिकीन यूँ कहेंगे कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ना हम शिर्क करते और ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज़ को हराम कह सकते। इसी तरह जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी तकजीब की थी, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चखा। ये आयत लिखिए, क्या आज हम मुसलमान नहीं कहते अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं खुद ही रोक लेगा गुनाहों से? तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गुनाहों को भी अल्लाह ताला के नाम पे डाल देते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों की जिम्मेदारी खुद लेने वाला बना दे और हम उससे अपने आप को बचाएं जिससे बचने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। आप कहिए, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसको हमारे सामने जाहिर करो। ये दूसरा मुकाम है दलील की बात है, तो किसी को कोई नेकी का अमल करता देखे ना उसकी दलील मांगे। आज कैसे लोग व्हाट्सएप पे आगे से आगे बातें करते हैं, अनयूजुअल बातें, ये पढ़ो तो ये सवाब, ये करो तो ये सवाब, ये खाओ तो। मैं एक लफ्ज़ नीचे लिखती हूँ कि रेफरेंस प्लीज, फिर कभी नहीं जवाब आया। आज वो मुल्क जहाँ आप एक पानी की बोतल लेते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, एक्सपायरी डेट पढ़ते हैं आप खानों में से, दीन ऐसी पेश करते हैं, मैं जो मर्जी कह दूँ। देखिए ये कुरान की आयतें आपकी आंखों के रास्ते इंशाल्लाह आपके दिल दिमाग पे जा रही हैं। आप यहाँ जो बात सुनेंगे ना आपका दिल कहेगा ये पारे के दौरान सुना था, ये कुरान का तर्जमा था, और ये तो तर्जमा ही है। 90% आप यहाँ तर्जमा सुन रहे हैं और 10% मैं आपकी कुछ मदद करती हूँ एक्स्ट्रा बातों में। तो ये कुरान हटा दें तो आप कहेंगे शायद मेरे ये ख्याल आता है। दोहरे कुरान का सबसे बड़ा ये फ़ायदा मुझे लगता है लोगों में कि एक गो में थोड़े से अरसे में उनको पूरे कुरान से कम अज़ कम एक रूशनासी तो हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला यही फरमा रहे हैं, दलील की बात करो, दलील दलील। आज हमारे मुल्क में दलील का तसव्वुर कम होता जा रहा है कि आज मुसलमान दलील की बात नहीं करते। तुम लोग महज ख्याली बातों पर चलते हो और तुम बिल्कुल अटकल पच्चू से बातें बनाते हो, यानी अजम्पशंस। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, आप कहिए क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसको हमारे पास जाहिर कर दीजिए। तुम लोग महज ख्याली बातों पर चलते हो और तुम बिल्कुल अटकल पच्चू से बातें करते हो, यानी ख्याल आते हैं बस, तो हम परस्ती तुक्केबाजी करते हो। आप कहिए बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही की रही, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर ले आता। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको हमारी नस्लों को राह रास्त पर रखे। कुल हलुम मशहदा अकुम, आप कहिए अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर गवाही दें कि अल्लाह ने इन चीजों को हराम कर दिया है, फिर अगर वो गवाही दे दें तो आप इसकी शहादत ना दीजिए, और ऐसे लोगों के बातिल ख्यालात का इत्तबा मत कीजिए जो हमारी आयतों की तकजीब करते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और वो अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। आप नोट करें, बार बार दलील मांगी जा रही है। तो इस्लाम दलील का दीन है, हर चीज की दलील दीजिए। कोई आपसे कहता है ट्रैफिक लाइट पर रुकिए, तो आप इस दलील है कि गवर्नमेंट ने कहा वैसे पे रुकना है, ग्रीन आ गई चल पड़िए, दलील है गवर्नमेंट ने कह दिया है कि रेड पे रुकना है ग्रीन पे चलना है। तो इस्लाम में भी प्लस माइनस बहुत वाजे हैं। अब अगली आयत है ना, इसको हाईलाइट कर लीजिए। यह आयत 151 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूरी शरीयतें, पिछली शरीयतों का खुलासा है। उम्महातुश शरिया भी इनको कहते हैं, यानी क्या हलाल है और क्या हराम। कुल ताल वत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, आप कहिए कि आओ मैं तुमको वो पढ़कर सुनाऊं जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमा दिया। वो ये कि अब गिनती जाइए, लिस्ट आउट करें कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक मत ठहराओ। पहली गलत है तो अगली चीजें कैसे काम आएंगी, इससे सबसे पहले शिर्क के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। फिर दूसरी चीज, और माँ बाप के साथ एहसान करो और अपनी औलाद को अफलास के सबब कत्ल मत करो। हम तुमको और इनको रिस्क देते हैं, और बेहयाई के जितने तरीके हैं इनके पास भी मत जाओ, ख्वाह वो एलानिया हो ख्वाह पोशीदा, और जिनका खून करना अल्लाह ने हराम कर दिया इसको कत्ल मत करो। हाँ हक के साथ इसका तुमको ताकीदी हुक्म दिया जा रहा है ताकि तुम समझो। ये जो आखिरी हिस्सा है ना, जालिकुम वसाकुम भी, इसकी वजह से उलमाए कराम इस आयत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीयत नामा कहते थे। और वसीयत के लफ्ज़ पे तो हम लोग बड़े कान लगाते हैं कि ये ताकीदी हुक्म है ताकि तुम समझो। कुछ और चीजें इसी लिस्ट में है, और वो क्या, वला तकरबु माल यतीम, और यतीम के माल के पास भी ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो कि काबिले तारीफ हो, यानी अच्छी नीयत से, यहाँ तक कि वो अपने सने रुश यानी बलूगत तक पहुंच जाए। और नाप तोल पूरी पूरी करो इंसाफ के साथ, हम किसी शख्स को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और जब तुम बात करो तो इंसाफ की करो, वो शख्स किराबतदार ही हो, और अल्लाह ताला से जो अहद किया इसको पूरा करो। इनका अल्लाह ताला ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया क्योंकि लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम याद रखो। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात कहना चाहूंगी, अगर नोट करें, सूरह बकरा में भी ऐसे काम आए थे। अब यहाँ 8वें पारे में आ रहे हैं, इसी तरह आगे जाएंगे तो फिर आपको सूरह बनी इसराइल में मिलेंगे। यानी हर तकरीबन 7.5-7 पारों के साथ कई चीजें रिपीट होती हैं। कल आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले पारे में, फिर 7.5 पारों पे, फिर आगे 15 पारे पे, फिर आगे। तो ये कुरान के एजाज है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस पे भी आगे जाकर आप बहुत कुछ सीखेंगे। अब ये सारी बातें बता के क्या कहा, वन सिराती मुस्तकीम फत्तबेउहू, ये है दीन। आज इस कुरान को आम कीजिए। लोगों ने जो खुद साख्ता शरीयतें बनाई हैं उन बेचारों को उसे निजात दिलाइए और बताइए क्या, और ये कि ये दीन मेरा रास्ता है जो मुस्तकीम है, बस इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो, कि वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी। इसका तुमको अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है क्यों, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। लअल्लकुम तत्तकून, तो मुत्तकी बनने का रास्ता शरीयत पे अमल करना है। आगे बनी इसराइल से मुतल्लिक कुछ बातें, सुम्मा तईना मूसल किताब, फिर हमने मूसा अलैहि सलाम को किताब दी थी जिससे अच्छी तरह अमल करने वालों पर नेमत पूरी हो और सब अहकाम की तफसील हो जाए और रहनुमाई हो रहमत हो, ताकि वो लोग अपने रब के मिलने पर यकीन लाएं। अब वो तो गुजर गया, अब आपके मेरे लिए क्या है, मोहब्बत से सुनिए। वहाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारक, जरा से इसको महसूस करिए, ये किताब है जिसको हमने भेजा बड़ी खैर बरकत वाली है, बस इसका इत्तबा करो और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। आपको इस किताब की बरकतें महसूस हो रही, वक्त में बरकत, माल में बरकत, सोच में बरकत, कशाइश है, बरकत है, आप फ्रेश नहीं फील करते? अगर नहीं करते तो कल से शावर लेकर आइए। तो अल्लाह की रहमतों को लेने का जरिया ये किताब है, और ये क्यों नाजिल की, अंतकुलु इन्नमा उन्जिलल किताब वला ताइफतैन, कहीं तुम लोग यूँ ना कहो कि किताब तो सिर्फ हमसे पहले जो दो फिरके थे इन पर नाजिल हुई थी और हम इनके पढ़ने पढ़ाने से महज बेखबर थे, या यूँ ना कहो कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम इससे भी ज्यादा राह रास्त पर होते। ये भी कुछ लोगों का डल में पहले कहते रहते हैं हाय कुछ हो कुछ हो कुछ हो, फिर जब वो वक्त आता है तो उस वक्त कभी मजबूरियों के नाम, कभी गफलतों के नाम, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। यहाँ नियत कीजिए और दुआ करें कि अल्लाह मैं कोई नेमत मांगू और वो मिले तो मुझे उसका हक अदा करने वाला बना। अब इस सारे जुमले के बाद सुनिए, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि या यूं ना कहो कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम इनसे भी ज्यादा राहे रास्त पर होते। सो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से किताबें वाजे और रहनुमाई का जरिया और रहमत आ चुकी है। अब इस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो हमारी आयतों को झूठा बताए और इससे रोके। हम जल्द ही इन लोगों को जो हमारी आयतों से रोकते हैं इनके इस रोकने के सबब सख्त सजा देंगे। आइए जरा तदब्बुर और अमल के नुक्ते लेते हैं इन आयात से। हमेशा इंसाफ की बात करें, चाहे इसकी जद अपनी जात पे पड़े, अपने ही खिलाफ बात करनी पड़े तो कीजिए, जुरत पैदा करें। वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करिए, यतीम की किफालत की नीयत कीजिए, इंसाफ की बात कीजिए। जैसे भले काम करेंगे वैसा ही अंजाम होगा। किसी एक यतीम की किफालत कर दें। आज तो वैसे ही नबी सल्लम के बारे में पढ़कर दिल थोड़ा सा रकीक है। नापतोल में कमी करने वाले ताजिर को अगर आप जानते हैं तो उसको अच्छी सी नसीहत कीजिए। कुरान की रहनुमाई, अल्लाह ताला से हिदायत मांगते रहें। दाई हक मुखालफत से नहीं डरता। इस्तकामत में करामत है। ये जुमला लिख लें। आज के दौर की सबसे बड़ी करामत क्या है? आम फी जुमाना बता रही हूँ कि कोई दीन पे कायम रहे। अल्लाह हमारे मर्दों को 5 वक्त का नमाजी मस्जिदों का बना दे और हमारी बेटियों और हमारे बेटों को लिबास हिजाब की पाबंदी करने वाला और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाला बना दे। फिर हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखना है, बिदत से दूर रहना है, गौर व फिक्र की बातें। हमारे गुनाह अल्लाह की तकदीर का लिखा हुआ नहीं बल्कि हमारे आमाल की वजह से हैं, इसको नोट कीजिएगा। ये हम तकदीर का नाम लेकर कहते हैं ना कि हमारे गुनाह फिर अल्लाह ने लिखे हैं, तो फिर अपनी नेकियों पर अजर क्यों मांगते हैं? वो भी तो अल्लाह ने कह दी, तो फिर तो आपको नेकी पर अजर क्यों मिले? ना हक कत्ल गुनाह कबीरा है। मुफलसी के खौफ से औलाद को कत्ल नहीं करना। फुहश काम करना तो दूर, इनके करीब भी नहीं जाना, क्योंकि बंदा जिस चीज के करीब जाता है फिर उसमें गिरने का डर होता है। हर शख्स ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं। बातिल से दूर रहिए। आपके रब को आपकी लिमिटेशन मालूम है, इसीलिए आगे देखिए आयत 158। हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका। क्या ये लोग सिर्फ इस अमर के मुंतजर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या इनके पास आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए, यानी कि अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं या क्यामत के आने का? जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम नहीं आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता या इसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया हो। आप फरमा दीजिए कि तुम मुंतजर रहो, हम भी मुंतजर हैं। इन्नल्लज़ीना फर्रक़ु दीनहुम वकानू शिया। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाईलाइट करिए, गिरोबंदी फिरका वारियत से नबी सल्लम का कोई ताल्लुक नहीं, बस इनका मामला अल्लाह के हवाले है, फिर इनको इनका किया हुआ जितला देंगे। तो ये जो कहना ना कि मेरा फिरका हक पे और मेरी जमाती हक पे, ये खुशफहमी है। कौन जाएगा जन्नत में? मन जा बिल हसनति फल हुआ शुरू अमसालिहा। हाईलाइट कीजिएगा, इस आयत से पहले अल्लाह ताला ने इस बात को लाकर क्या पेश कर दिया कि अल्लाह कितना कदरदान है। जो शख्स नेक काम करेगा इसको इसके 10 गुना मिलेंगे और जो शख्स बुरा काम करेगा इसको क्या इसको भी 10 मिलेंगे? नहीं, इसको इसके बराबर ही सजा मिलेगी और इन लोगों पर जुल्म ना होगा। ये है कतब अला नफ्सिही रहमा। पारा नंबर 7 में 2 दफा ये आयत पढ़ के आए हैं पिछले पारे में। उस रब ने अपने नफ्स पे रहमत लिखा है, ये रहमत है। गुना एक का एक ही लिखा जाता है, नेकी एक ही 10 लिखी जाती है। फिर भी अगर कोई ना माने, फिर भी कोई अपने आप को गुनाहों में रखे, तो वही बात है कि उसकी इकाइयां उसकी धाइयों पे गालिब आ जाए। वो वही होगा जिसने इरादा कर लिया कि मुझे जहन्नुम में जाना है। इसीलिए फरमाया कुल इन्नी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम। आप कह दीजिए मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया कि वो एक दीन मुस्तहकम है, जो तरीका है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह की तरफ यकसू थे। अल्लाह हमें भी यकसू कर दे, फोकस बना दे, और वो शिर्क करने वालों में से न थे। अब आपको मुझे सूरत के खात्मे पे पहुंचकर एक बहुत प्यारा पैगाम दिया जा रहा है। कुल नस्ल आती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दीजिए बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही का है जो सारे जहान का मालिक है। इसका कोई शरीक नहीं और मुझको इसी का हुक्म हुआ और मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ, यानी बारिश का पहला कतरा बनूंगी। ये नहीं देखूंगी मेरा खानदान सारा ठीक हो जाए फिर ठीक होंगी, मेरी दोस्तें जो कर रही हैं मैं वही करूंगी। और ये है वो जिस पे कहते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। याद रखिए ये सिर्फ दावत और इबलाग नहीं है, ये अपने जबान से 6 फुट पे अल्लाह के दीन को नाफिज करना है। आज कद आवर आईने में खड़े होकर अपने आप को देखें, कोई हिस्सा शरीयत से बाहर तो नहीं, कोई चीज मेरी सोच मेरी अकल मेरी फिक कोई गलत तो नहीं है, बस उसको ठीक करना है। इसीलिए फिर आगे फरमा दिया ला शरीक लहू व बिजालिक उमिरतु अन अव्वलुल मुस्लिमीन के बाद कुला गैर अल्लाह या बगैर रब्बा। नहीं हम तो कभी नहीं अल्लाह के सिवा अपने किसी और को रब मानेंगे। कोई कहता है अपनी माँ के सिवा कोई और माँ लेनी है, तुम अगर इस माँ की बात नहीं मानना पसंद करती तुम्हें माँ अच्छी नहीं लगती तो कोई लेनी है, कितना बुरा लगेगा हमें। कोई माँ की बात माने ना माने माँ को बदलना कोई नहीं चाहता, ये पक्की बात है। माँ गोरी हो काली हो जैसी भी हो माँ को कोई नहीं बदलता। अब जरा सुनिए वो लोग जो दीन में अपनी मर्जियां और इजाफे करके फिर ये उनको खिला दो उनके नाम पे वो हमारे खिलाने वाले। अल्लाह फरमाते हैं इस नबी ने क्या कहा और मक्का में हलचल मच गई इन बातों पे। क्या फरमा दीजिए क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूँ, क्या मुझे अपना रब अच्छा नहीं लगता, बल्कि क्या रदीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं तो अपने इस रब के रब होने पर राजी हूँ। हालांकि वो मालिक है हर चीज का और जो शख्स भी अमल करता है और वो इसी पर रहता है और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। 2 सेकंड गौर करें, कभी किसी को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज ना करें, फिर तुम सब अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको जतला देगा जिस जिस चीज में तुम इख्तलाफ करते थे। तो लोगों को भूल कर रब को याद कीजिए क्योंकि वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द। अब आखिरी आयत सुनिए, और वो ऐसा है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि तुमको आजमाए। अल्लाह ने लोगों में जो मुख्तलिफ चीजें रखी उसकी वजह आजमाइश थी। इन चीजों में जो तुमको दी गई हम चीज के ना होने को आजमाइश कहते हैं। यहाँ आप देख लीजिए आयत को अगर अरबी में भी पढ़ रहे हैं ना तो अल्लाह ताला कहते हैं वरफ अबादुकुम फौक अबादिन दरजात लियब्लुवकुम फी मा आताकुम। तो हर नेमत इम्तिहान का पर्चा, हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा, सेलफोन इम्तिहान का पर्चा, गाड़ी घर हुसन जवानी इम्तिहान का पर्चा। अब देखते हैं कि हम इन पर्चों में कितने नंबर लेके पास होते हैं। बिल यकीन आपका रब जल्द सजा देने वाला है और बिल यकीन वो वाकई बड़ी मगफरत करने वाला और मेहरबानी करने वाला है। बहुत खूबसूरत मजमून पे सूरत पूरी हुई। आइए थोड़ा सा तदब्बुर करते हैं और अमल के नुक्ते। किसी कब्र परस्त को प्यार से समझाइए कि कब्र वाला अगर कुछ कर सकता तो खुद को तो कब्र से बाहर निकाल लेता। अल्लाह के सिवा इबादत किसी की नहीं हो सकती, किसी से मदद नहीं मांगी जा सकती। अल्लाह से अपने लिए इखलास की तौफीक मांगिए क्योंकि इखलास के साथ ही नेकियों में तासीर भी पैदा होती है। किसी मोहताज के साथ भलाई कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको लेने वाला नहीं देने वाला बनाया। कुरान पाक से रहनुमाई, तौबा और नेक अमाल में जल्दी करनी है, डिली डाली का शिकार नहीं होना। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करनी है। दाई को अपनी दावत में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, वक्त हालात और लोगों के नाते से, यानी एक लाठी से सबको नहीं हाँकना। फिर गौर व फिक्र की बातें, असल ईमान तो है ही ईमान बिल गैब। मौत की निशानियां सामने आ जाएंगी तो ईमान लाना बेफायदा होगा। ये तो ऐसे ही है कि जब पेपर सामने आ जाए तो एक तालिबे इल्म कह दे कि आप किताब दे दो जरा मैं पढ़ के इनके जवाब दूँ, नहीं अब फायदा नहीं होगा। मुनकरीन के अच्छे अमाल आखरत में किसी के काम नहीं आएंगे क्योंकि पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई। नमाज और कुर्बानी का खसूसियत से जिक्र किया गया है, ये दो इबादात भी हैं और दो सिंबल भी हैं। किस चीज के? नमाज इबादत और कुर्बानी लाइफस्टाइल। लम्हा लम्हा कुर्बानी करके बंदा रब को बताता है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ। और मेरा जीना और मरना सिर्फ अल्लाह के लिए हो, इसकी दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सूरत भी पूरी हुई और सूरत के आखिर 165 पे निस्म हो गया। शौर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह की अला नेमतिल कुरान, और अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमा दे।